नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का अभी सीजन चल रहा है और आज 19 जून है। कल पूरे विश्व में खास करके जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मार्जन का कार्यक्रम किया जाएगा। तो जगन्नाथ की अनंत कहानियां हैं। आज मैं आपको जगन्नाथपुरी की जो विशेषताएं हैं, स्पेशल आइटम्स, उनके बारे में बताऊंगा। जगन्नाथपुरी ये बहुत अद्भुत धाम, वैसे वैदिक धर्म के अनुसार और वैदिक शास्त्रों के अनुसार तीन प्रमुख धाम हैं। एक है श्री वृंदावन धाम, एक है श्री मायापुर धाम और एक है जगन्नाथपुरी धाम। और ऐसे कहा गया है कि जगन्नाथपुरी, मायापुर और वृंदावन ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। तीनों का पावर, तीनों का पोजीशन एक ही है, लेकिन फिर भी तीनों अलग अलग भगवान का लीला स्थली है, जहां पर भगवान लीला करते हैं। तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसकी ये विशेषता है कि बहुत ऊंचा मंदिर है, बहुत आकाश में, लेकिन जितना आकाश में है उससे 9 गुना जमीन के अंदर है। जितना भव्य आपको दिखाई पड़ता है ना, उससे 9 गुना वो जमीन के अंदर है और वो नीलाचल नाम के पहाड़ पर बना हुआ है। और कुछ कुछ जमीन के नीचे हम लोग जा सकते हैं और ऐसा देखा गया है कि उसके अंदर बहुत सारे रत्न हैं और रत्नों का भंडार है। लेकिन एक बार जब अंग्रेजों का राज्य था तो एक लॉर्ड हेस्टिंग्स नाम का आदमी था जो अंग्रेजों की तरफ से, रानी की तरफ से यहां पर राज्य करता था, तो उसे जबरदस्ती अपने पावर से जाकर जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाकर उसका तल घर है ना, वो बेसमेंट, उसको खोलने का प्रयास किया। एक दरवाजा खोला तो उसको बहुत अंधकार में बहुत सारा ज्वेल्स, रत्न दिखाई पड़े। लेकिन दूसरा जब खोला तो ऐसा जोर से आवाज अंदर से आया कि इसको बहुत डर लगा, जैसे कोई सिंह चिल्ला रहा हो या कोई शेर चिल्ला रहा हो या कोई ऐसे भयंकर सांप चिल्ला रहा हो। ऐसे उसको समझ में आया, एग्जैक्टली आया नहीं कि किसकी आवाज है, लेकिन इतनी भयंकर आवाज आई कि वो डर गया और वहां से भाग गया अपने सब लोगों को लेकर। और जब जा पहुंचा अपने घर तो ऑफिस में जाकर उन्होंने सबसे पहला कायदा बनाया कि इसके आगे जगन्नाथ के बेसमेंट में, तड़घर में कोई जाएगा नहीं। इतना वो डर गया तो वो उसका राज ये है कि वो भगवान का गुप्त धन है। पुराने जमाने में जब मंदिर बांधते थे ना, ऐतिहासिक मंदिर, जो अनंत पद्मनाभ का मंदिर है साउथ इंडिया में, गुरुवायूर का मंदिर है, रंगनाथ का मंदिर है, ऐसे ही जैसे उड़पी का मंदिर है, कितनी बताऊं आपको, बहुत सारे ऐसे मंदिर है जिसको बनाते समय उसके भविष्य के लिए बहुत धन, रत्न, माणिक, हीरा आगे चलाने के लिए, उसको कभी संकट आ गया, कभी अकाल पड़ गया, मंदिर का धन खत्म हो गया, तो मंदिर को चलाने के लिए गुप्त धन जो है जमीन के अंदर गाड़ के रखा गया है, और उसके ऊपर एक नाग को भी रखा गया है रक्षा करने के लिए। ये भावना से बनाया गया है कि जब आगे कभी संकट आएगा तो मंदिर की सेवा जो है वो चलनी चाहिए। कई ऐसे भारत में जाति है जो बहुत गरीब होते हैं, वो भिखारी काम करते हैं या कोई रस्ते पर काम करते हैं, तो उनकी गरीबी इतनी होती है कि उनके माता पिता, उनका जन्म होते ही उनका अंदर एक ऐसा एक क्या कहते हैं उसको, उत्सव बोलो या नियम बोलो या कुछ भी बोलो, कुछ भी हो जाए, जन्म हो गया मतलब वो एक चांदी का बड़ा पट्टा जो है वो कमर में उसको बांध देते हैं। क्यों मानते बताए, इतनी गरीबी है, समझो गरीबी से कभी वो मर गया तो उसका अंत संस्कार करने के लिए वो जो पट्टा है वो निकालते हैं, उसको बेचते हैं और पैसा लाके उसका अंत संस्कार, दफनाने का, जलाने का जो भी संस्कार है वो कर देते हैं। इसलिए आप साउथ इंडिया में जाओगे तो बहुत गरीब लोग आपको रास्ते पर काम करते नजर आएंगे, लेकिन सबके कमर में एक पट्टा रहता है, चांदी का पट्टा रहता है, वो बचपन का उनका धन है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पहनते हैं। जब भी कभी अकेला मर गया कोई आदमी, उसका आगे पीछे कोई नहीं है, तो उसको जलाने के लिए उसको काम करते हैं। ये तो इंसान के रूप में हुआ, भगवान के मंदिर के लिए तो बहुत दिव्य धन और बहुत बड़ी मात्रा में वेल्थ जो है वो जमीन के अंदर गाड़ के रखते, तो वही वो धन है वो जगन्नाथपुरी के मंदिर के नीचे राजा इंद्रदुम्न ने रखा हुआ है अभी भी। अनंत पद्मनाभ का जो मंदिर है उसमें पेपर में अभी आया था ना न्यूज कि इतना धन है उसके अंदर कि अरबों और अरबों डॉलर्स का कीमत भी उसका नहीं हो सकता, इतना बड़ा धन है। और केवल एक भंडार खोला गया और ऐसे कई भंडार लॉक में हैं, ऐसे शोध लगा उसका, एक खोला उन्होंने तो वो गिनती नहीं कर पाए, इतना धन है उसके अंदर। और आगे भी पता चला कि आगे भी है लेकिन उसको खुला नहीं गया, अभी उसका बहुत सारा पॉलिटिकल गड़बड़ चल रही है उसके बारे में, लोग सोच रहे हैं कैसा उसको लूटा जाए लेकिन भगवान का धन है वो, कोई उसको हाथ लगाएगा तो उसका जीवन में बहुत विनाश आएगा। भगवान के धन को, सब कुछ भगवान का है वैसे है, लेकिन कुछ कुछ धन खास भगवान के लिए रखा होता है, भगवान की प्रॉपर्टी होती है, भगवान का मंदिर होता है, उसमें कोई जैसे चर्च है, मस्जिद है, वो भगवान की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आम आदमी को अधिकार नहीं जाके कुछ उसका छीन लो, आके बल्ब लेके जाओ, अच्छा चैंडेलियर है, पंखा लेके जाओ, नल लेके जाओ, ऐसा नहीं होता है, वैसे करने से बड़ा पाप लगता है। तो ये एक चमत्कार है, वहां पर जितना ऊपर है उससे 10 गुना नीचे है। और एक खासियत ऐसी कि वो मंदिर इतना ऊंचा है, उसका चारों तरफ आपको केवल मंदिर का शिखर दिखेगा, और उसके ऊपर एक झंडा लगाते हैं। और अभी आप जाएंगे, अभी जगन्नाथपुरी का तो पूरा इतना, जगन्नाथपुरी में उत्सव का वातावरण है, लाखों लोग आते हैं बिना इन्विटेशन के, पूरे वर्ल्ड का ये रिकॉर्ड है कि एक दिन में बिना इन्विटेशन के सबसे अधिक लोग कहाँ इकट्ठा होते हैं, तो जगन्नाथपुरी में 10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, पता नहीं कहां से आते हैं और शाम को चले भी जाते हैं। और सबसे अधिक लंबे समय तक अगर कोई जगह है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं वो है कुंभ मेला, उसमें 3 करोड़ लोग एक महीना में इकट्ठा होते हैं, कोई निमंत्रण पत्रिका नहीं है, कोई कुछ आवेदन नहीं है, कुछ नहीं है, अपने आप लोग पहुंच जाते हैं वहां पर। तो ब्रिटिश लोग बहुत अचंभा करते थे, रही है क्या रहस्य है इंडिया में, हाँ इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्या करने के लिए, नदी में स्नान करने के लिए, लाइन लगा के धक्का मुक्की करके उस समय पे नदी में कूदने के लिए वो इतना लाइन लगाते हैं, और नदी में स्नान हो गया तो पता नहीं शाम तक गायब हो जाते सब लोग और गवर्नमेंट कितनी व्यवस्था करते हैं, कुंभ मेला खास म्यूनिसपालिटी है, खास कुंभ मेला का बजट है, कुंभ मेला का कितना महीने तक इंतजाम चलता है, बैरिकेडिंग प्लानिंग चलता है उधर, जैसे पंढरपुर में होता ना आषाढ़ एकादशी का, वैसे बोला ऐसा भारत ही एक देश है, इसमें जब मत मावली का वो उधर बांद्रा में लगता ना मेला, पता है कितना हजार लोग वहां पर आते हैं, खाली इंडिया में ऐसा होता है और कहीं नहीं होता है। इवन मक्का मदीना में जो हाज में यात्रा होती है उतना उसका भी इतना नंबर नहीं जितना कुंभ मेला का नंबर है 3 करोड़, और हर साल वो नंबर जब मैं पहले सुना था तो 9 लाख था जगन्नाथपुरी का, फिर 10 लाख हो गया, अब सुन रहा हूँ कि 12 लाख हो रहा है ऑटोमेटिक एक ही दिन के लिए। और हजारों बसेस सुबह आती है, हजारों बसेस शाम को निकल जाती है, और फिर 10 लाख में से 1-1.5 लाख लोग बच जाते हैं, 9 दिन तक वहां रहते हैं। तो ये जगन्नाथपुरी का जो शिखर है वहां पर झंडा लगता है, और वो झंडा जो उसका नियम ऐसा है कि आप में से कोई भी आदमी अपनी तरफ से झंडा लगा सकता है। भगवान के मंदिर पर झंडा लगाना, ध्वजा लहराना, ये बहुत पवित्र काम माना गया है। तो लोग क्या करते हैं, हम भी जगन्नाथपुरी आए, आप भी आए हैं, तो हमारी तरफ से झंडा, फिर आपकी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी कुछ डोनेशन देते हैं और झंडा लगाते हैं। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो बहुत दूर हो, बहुत ऊंचा मंदिर होता है, उसके अंदर आपको इतना सा आदमी दिखेगा, थोड़ा सा चढ़ रहा है ऐसे सीढ़ी से, और वहां पे लंबा, उससे भी जो जितना हाइट का आदमी उससे 10 गुना हाइट का लंबा झंडा लगाता है वो और वो हवा में फहराते रहते हैं। आज तक ऐसा इतिहास है कि इतने बड़े मंदिर पर चढ़कर बच्चे भी झंडा लगाते हैं, पंडाओं के जो पुजारी है, पंडा है उनके, लेकिन एक भी आदमी आज तक वहां से गिरकर मरा नहीं है, ये उसका रिकॉर्ड है। एक बार एक लड़का झंडा लगाते, उनको ना 5 साल से ही झंडा लगाने का ट्रेनिंग दे देते हैं, तभी बच्चे के साथ में एक आदमी रहते, हाथ पकड़ पकड़ के उसको ऊपर चढ़ाता है, सिखाता है, क्योंकि उसका वो बहुत बड़ी सेवा है उनकी झंडा लगाना। एक लड़का गिर गया था, तो आज तक उसमें लिखा लिख के रखा इतिहास में कि जब वो एक ही बार आज तक एक लड़का गिर रहा था तो उस समय एक बड़ा बंदर, बहुत बड़ा बंदर जो होता ना गोरिल्ला टाइप, बहुत जोर मनुष्य के साइज का भी बड़ा होता है गोरिल्ला, उस साइज का एक बंदर पता नहीं कहां से आया, उसने उस बालक को हवा में कैच किया और जमीन पर छोड़ के वो बंदर गायब हो गया। पता नहीं बंदर कहां से आया था और कहां गया, किसी को दिखाई नहीं पड़ा वो आज तक, लेकिन बच्चा जो है उसको कुछ नहीं हुआ, ये उसका इतिहास है, ये एक और खासियत है उसकी। तीसरी खासियत क्या है, अब बारिश आ रही है, सब जगह हवा बह रही है, समझा, अभी हवा समझो खिड़की से अंदर ऐसे इस तरफ जा रही है, तो पर्दा कहां उड़ेगा आपका बताओ, पर्दा इधर उड़ेगा ना, तो जब हवा ऐसे आ रही है पर्दा वहां जा रहा है, ऐसा होता है कभी, क्यों नहीं होता है, जिस दिशा में हवा आ रही है उसे पर्दा जाएगा ना, लेकिन जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको यकीन नहीं आता है मैं क्या बोल रहा हूं, आपको जगन्नाथपुरी में जाके ये अपने आंखों से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है, आपको बता रहे हैं चमत्कार। जिस दिशा से हवा आती है उसके उल्टी दिशा में झंडा फहराता है ये जगन्नाथपुरी की और एक खासियत है। चौथी खासियत ऐसी उसकी मंदिर की कि मंदिर के चारों तरफ 4 दरवाजे हैं, सिंह द्वार मतलब उसमें सिंह के ऐसे मूर्तियां हैं, अश्वद्वार जिसमें घोड़े की मूर्तियां हैं, और व्याघ्र द्वार मतलब शेर की मूर्ति होती है, और एक जगह पर गजत द्वार हाथी की मूर्ति होती है, ऐसे पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर 4 दिशा में 4 बड़े गेट्स हैं उसके, बहुत बड़े बड़े गेट्स, और उस गेट्स जो दीवारें हैं जिसमें वो गेट बने हैं वो इतने ऊंचे हैं मानो मुंबई के समझो 7-8 मंजिल के ऊंचाई तक उसके दीवारें बनी होंगी। चारों तरफ मंदिर जो है ऐसे ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी इतनी इतनी मोटी दीवार से बंद है पूरा, लेकिन फिर भी जगन्नाथ मंदिर का जो वातावरण है अंदर का जो एटमॉस्फेयर है ना पूरा हवा से भरा रहता है, सब जगह सब बंद होने पर भी अंदर बहुत जोरदार हवा खेलती रहती है, ये और एक खासियत है उसकी। आगे की खासियत ऐसी है कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो नीलाचल नाम के पर्वत पर बना हुआ है, और वो बिल्कुल समुद्र किनारे पे है, समुद्र किनारे के वालू है ना उधर ही है वो पहाड़ है उसके ऊपर वो बना हुआ है। तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि समुद्र की आवाज तो मंदिर में आनी चाहिए ना, मंदिर में आप जाएंगे हवा घूमेंगे अंदर देखेंगे क्या चल रहा है मंदिर में, तो आपको सब जगह से समुद्र की आवाज आनी चाहिए ना, कि सब समुद्र किनारे कहीं किसी घर में जाएंगे तो जब तक समुद्र किनारा है तब तक वो समुद्र के लहरों की आवाज हवा की आवाज आती रहती है। लेकिन जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ भगवान आए स्नान यात्रा के दिन, तब उनको जब उनका स्थापना किया गया तो उनको समुद्र की एक कंटिन्यूअस आवाज से वो डिस्टर्ब हो गया, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे पिताजी समुद्र है, मालूम है कैसे हैं, क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ था ना तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी का निर्माण हुआ था, इसलिए समुद्र के पिताजी के रूप में समुद्र को अपना लक्ष्मी के पिताजी के रूप में समुद्र को मानते हैं कि समुद्र लक्ष्मी के पिताजी है। तो जगन्नाथ जी अपने पत्नी लक्ष्मी को बोलते जाओ तुम्हारे पिताजी को बोलो कि हमारे घर में आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए तो कहते हैं कि वो समुद्र तो ऐसा, जब जगन्नाथपुर का समुद्र आपने देखा है, किसी ने देखा है, कितने लोगों ने देखा है जगन्नाथपुर का समुद्र जो है? अरे पूरे वर्ल्ड में समस्त समुद्र फेमस है, वो इतना फेमस है, इतना भयंकर समुद्र जो है वो वर्ल्ड में किधर नहीं है। उसकी ऐसी लहरें आती है कि कितना ही बड़ा तैरने वाला हुआ ना आदमी, तो वहां पर तैरना मेरा काम नहीं आता है। तैरने वाले को ऐसा समुद्र जो है उठा के फेंकता है ऐसा बाहर, या तो बाहर फेंकता है तो अंदर लेके जाता है। हाँ, मेरे जैसे आदमी को, मेरा बहुत सारा वजन है फिर भी मुझे ऐसा गेंद की तरह उठा के फेंक देता है एक बार समुद्र में जगन्नाथपुरी में। तब से मैं ज्यादा उधर मस्ती करने जाता नहीं मैं। क्योंकि वहां पर कोई भी वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर हो, तैराक हो, कोई काम नहीं उसका उधर। या तो उसको अंदर से बाहर फेंका जाएगा लहरों के द्वारा, या तो उसको लहरें अंदर अंदर खींचती जाएगी, फिर वो आदमी अंदर नहीं वापस नहीं आ सकता, वो आगे आगे ही चला जाएगा। इतना भयंकर समुद्र है वो, और आपको मैं वर्णन नहीं कर सकता उसकी आवाज और उसका जो गंभीर और भयंकर जो रौद्र स्वरूप है ना, आपको जाके देखना पड़ेगा। तो वो समुद्र जो है वो हमेशा जगन्नाथपुरी के जगह पर, मतलब जमीन पर आक्रमण करता था हमेशा, हमेशा फ्लड्स और हमेशा ऐसा कुछ होता था वहां पर। तो समुद्र को रोकने के लिए फिर लक्ष्मी देवी ने हनुमान जी को बोला कि हनुमान जी आपको यहाँ खड़ा रहना है, क्योंकि तो हनुमान जी का पोजिशन ऐसा है कि हनुमान जी से समुद्र जो है वो डरता है। समुद्र देवता जो है वरुण राज, वो हनुमान से डरता है। तो हनुमान जैसे बहुत जोरदार आवाज करता है, समुद्र अपने जगह पर रहता है। तो हनुमान जी को वहां खड़ा किया तो समुद्र का आगे आना बंद हो गया। तो बहुत दिन हनुमान जी खड़े रहे वहां पर। अभी देखो आपका सेवा है, जब सिक्योरिटी गार्ड है वो रोज खड़ा है। कुछ यूनियन का प्रॉब्लम हो गया, कुछ गुंडागर्दी हो गया, कुछ लोग आए शराब पी के नवाज तमाशा कर रहे हैं, तो कुछ काम है उनको रोकने के लिए, धक्का मारने के लिए, बाहर फेंकने के लिए। लेकिन केवल उनके खड़े होने से अगर कोई नहीं आता होगा डर के ही उनको, तो कुछ देर के बाद बोर हो जाएंगे ना, अभी क्या है, कुछ काम ही नहीं है। चलो कैंडी जाके वड़ा खा के आते हैं, मसाला डोसा खा के आते हैं। ऐसे हनुमान जी वहां खड़े खड़े, उनके खाली खड़े होने से समुद्र का आगे आना बंद हो गया, समुद्र का जगन्नाथपुरी को घेरना भी बंद हो गया। तो जगन्नाथपुरी में कुछ काम ही नहीं, अभी खड़े खड़े होने से क्या बोर हो गए होने लगा। तो उनको सीता मैया के द्वारा खिलाए गए लड्डू और पंच पकवान और मिठाई की याद आने लगी। बोले यहाँ जगन्नाथपुरी में तो क्या है, दाल चावल है खाली। और सीता मैया के पास अयोध्या में तो इतना मधुर मधुर खाना मिलता था, इतने लड्डू मिलते थे, मिठाई मिलती थी, बड़े प्रेम से सीता मैया अपने पुत्र की तरह उसको खिलाती थी। तो उनको लगा अभी बहुत दिन से कुछ आतंक तो हुआ नहीं यहाँ पर, जो जाके आते रात के समय। तो रात में उन्होंने एक छलांग लगाई और अयोध्या पहुंच गए। वो चलते नहीं, कभी चलते भी नहीं, दौड़ते भी नहीं, क्या करते हैं एक छलांग लगाते हैं सीधा स्ट्रेट, यहां से विरार, यहां से चर्च गेट, कोई बीच में स्टेशन विशन कुछ है ही नहीं। तो वैसे जगन्नाथपुरी से सीधा उन्होंने छलांग लगाया और अयोध्या पहुंच गए। और सीता मैया ने उनका बड़ा स्वागत किया, अरे बेटा तुम बहुत दिन के बाद आए, पुत्र क्या करूं तुम्हारे लिए, मैया तुम्हारे हाथ का भोजन खाने का बहुत दिल कर रहा है, इसलिए मैं इतनी दूर से आया हूँ, कुछ जल्दी जल्दी अच्छा भोजन खिलाओ। तो मैया ने बहुत प्रेम से लड्डू वड्डू पंच पकवान सब खिलाया उसको, बहुत भरपेट आनंद आया। और अभी चलने का समय हो गया, तो यहाँ पर जगन्नाथपुरी में क्या, जय श्री हनुमान जी वहां से गए, समुद्र ने आक्रमण किया, पूरा जगन्नाथपुरी को क्या बोलते तूफान और बाढ़ से भर दिया, पूरा हाहाकार मच गया। सब जगन्नाथपुरी के लोग पूछ रहे हनुमान जी कहा है, हनुमान जी कहा है, हनुमान जी तो है नहीं वहां पर, गायब हो गए। तो हनुमान जी लौट के आते हैं, जैसे हनुमान लौट रहे समुद्र वापस अपनी जगह पर जाता है। तो ये देखकर सब लोग कंप्लेंट करते हैं, हनुमान जी ऐसे कैसे आप भाग जाते हो, आपका सेवा यहाँ पर समुद्र को रोकने का, आप कहाँ चले गए थे? बोले क्या कर रहे हैं, आपके जगन्नाथपुरी में तो कुछ भोजन तो कुछ मिलता ही नहीं है, एकदम ऐसा हाँ उपवास ऐसा लगता है मैं उपवास कर रहा हूँ। मैं यहाँ उपवास करने नहीं आया हूँ, मैं तो अच्छा अच्छा खाना खिलाऊ, मैया की याद आई, मैया के पास गया और खाके आया मैं। बोले कोई बात नहीं, जगन्नाथ भगवान ने उनको वादा किया कि आज के बाद मैं जो 56 भोग खाऊंगा उसका पहला महाप्रसाद आपके पास पहुंचेगा। और फिर भी उसके बाद भी ये प्रॉमिस करने के बाद जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान को ये प्रॉमिस उनका मिलने के बाद हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, अभी सबसे पहले भोग लगेगा तो महाप्रसाद किसी को बटने के पहले हनुमान जी को मिलेगा। राजी हो गए, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं था, लोगों ने जगन्नाथपुरी में हनुमान जी को समुद्र किनारे पे लोखंड के श्रृंखला से बांध के रखा है। इसलिए उसका नाम क्या है, बेड़ी हनुमान, मतलब बेड़ी से उनको बांध के खड़ा किया है। जगन्नाथ के मंदिर जाएंगे ना आप समुद्र किनारे, तो धोती के नीचे आप पंडा को बोलेंगे तो पंडा आपको धोती उठा के दिखाएगा, तो बड़ी बड़ी लोखंड की जो होते ना सरलियां, क्या कहते हैं उसको, श्रृंखला साखड़ी, उसके उसको बांध के रखा है ऐसे खड़े उधर। और रही आवाज की बात, तो लक्ष्मी देवी ने अपने पिताजी से कहा आवाज मत करो, मेरे हस्बैंड को डिस्टर्ब होता है। इसलिए एक चमत्कार क्या है, समुद्र किनारे पर ही जो पर्वत है छोटा सा टील टेकड़ी, उसके ऊपर जो मंदिर है उसमें तो दिन रात, उसके बाहर जाएंगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज आएगी, लेकिन जैसे ही आप समुद्र के जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो बिल्कुल शांति, एक भी लहर की आवाज अंदर नहीं आती। ये भी एक चमत्कार है। और एक चमत्कार उसका ऐसा है कि जगन्नाथपुरी में किचन है लक्ष्मी देवी का। हा? लक्ष्मी देवी जो है ना वो एक्चुअली राधा रानी है स्वयं, लेकिन जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी के रूप में वहां प्रकट हो जाती है। तो जगन्नाथपुरी में भगवान क्या करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, यस, जगन्नाथपुरी में केवल भोजन करने जाते हो। जब भगवान को भोजन करने का दिल होता है तो जगन्नाथपुरी जाते, जब उनको खेलने का दिल करता तो कहां जाते हो, श्री वृंदावन में वो खेलने को जाते हैं। जब उनको राजपाट पॉलिटिक्स करने का इच्छा होता है तो कहां जाते हैं, द्वारका में जाते हैं। हाँ, और जब उनको इच्छा होती है कि तपस्या की जाए तो कहां जाते हैं, हाँ, बद्रीनाथ हिमालय में जाते हैं, वहां पर नर नारायण के रूप में वो तपस्या करते हैं। तो वो जगन्नाथपुर में क्यों आते हैं, भोजन करने के लिए। तो मेन एक्टिविटी क्या है, किचन, हाँ, रसोई। तो लक्ष्मी देवी राधा रानी जो है लक्ष्मी देवी का रूप धारण करके वो पूरा किचन जो है उसका चार्ज ले लेते हैं। अभी वो किचन में कितने चूल्हे होंगे, कुछ आइडिया है आपको, एनीबडी, एनीबडी, अंदर बाहर किसी को आइडिया है। जगन्नाथपुरी का किचन जो है ना वो कम से कम 10 एकड़ एरिया में, ज्यादा नहीं है, केवल 10 एकड़ एरिया में। और जगन्नाथपुरी का जो किचन है उसके अंदर 7200 चूल्हे हैं, बड़े बड़े ऐसे पत्थर से बने हुए हैं, नीचे से लकड़ी की उसको आंच देते हैं, और बड़े बड़े मटके जिसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये हाथ है ना, ऐसा ये हाथ इतना चौड़ा, मतलब कम से कम कितना हो गए, 4 फीट तो होगा ना, 4 फीट चौड़ा और कम से कम 4 फीट या 5 फीट बड़ा, इतना बड़ा मटका चूल्हे पर रखते हैं। और हमारे घर में एक साथ खाना बनाते कितना चूल्हा रखते हैं हम लोग, चूल्हे में कितना सामान रखते हैं, एक बर्तन रखेंगे ना, एक चूल्हे में एक बर्तन, अगर 4 चूल्हे का बर्तन गैस होगा तो 4 बर्तन रखेंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं होता है। जगन्नाथपुरी का आश्चर्य यह है कि एक चूल्हे पर कम से कम 4 से 5 बर्तन रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो आपका जो कॉमन साइंस, आप सब लोग साइंस स्टूडेंट है, कुछ नर्सिंग स्टूडेंट है, कुछ लोग घर में खाना बनाते हैं, कुछ लोग घर में खाना नहीं बनाते, लेकिन सब लोगों को कॉमन सेंस पता है ना कि जब हम लोग अग्नि जलाते हैं तो सबसे पहला कौन सा बर्तन में खाना पकता है, निश्चित ना, नीचे का ऊपर का, नीचे ना, जहां पर अग्नि लग रहा है वहां का पहले पकेगा, और अगर ऊपर वाला पकने का है तो उसके बाद में पकेगा, है ना, वहां से जब बाफ आएगी ऊपर देगी तो उससे ऊपर ऊपर वाला पकेगा। लेकिन मित्रों दोस्तों भाइयों और बहनों, जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं होता है। ये भी अगर देखना है आपको तो वहां जाके देखना पड़ेगा, फिर आप विश्वास करेंगे। जगन्नाथपुरी में जो रसोईया होते हैं वो 4-4 बर्तन ऊपर रखते हैं ना, तो सबसे पहला जो खाना पकता है वो सबसे ऊपर वाले में पकता है, और उसको उतार के रखते हैं, उसके बाद कुछ देर के बाद में दूसरा निकाल के रखते हैं, तीसरा, फिर लास्ट में चौथा। आपको लगेगा डॉक्टर शानबाग पूरा बंडल मार रहे हैं, उनको यहां पर कोई मिला नहीं है साहब, वो मंगलवार के दिन टाइम पास करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जाके खुद देखना पड़ेगा अपनी आंखों से। सबसे ऊपर वाला बर्तन जो है सबसे पहले पकता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, और नीचे का जलता नहीं। आप बोलेंगे अरे नीचे का कब से रखा है, वो तो नीचे पूरा काला हो गया होगा, ऐसा नहीं, लास्ट में पकता है वो, उसको बाद में फिर निकाल लेते। और एक विशेषता ये है कि जो रसोईया होते हैं दुनिया भर में, जितना भी मंदिर है, जितने मंदिर दुनिया भर में बनाए गए हैं, राम के हैं, लक्ष्मण अपने विष्णु के हैं, या कृष्ण के हैं, या और कोई देवी देवता के हैं, सब जगह पुजारी लोग है ना बिना खाए पिए उपवास रखकर रसोई घर में आते हैं, भगवान के लिए पूरा खाना बनाते हैं, फिर वो उसका भोग लगता है, फिर वो मंदिर से बाहर निकल के जब भोग निकल के आता है तो उसका प्रसाद बाद में खाते हैं उसको, तो अपना उपवास सब छोड़ते हैं जब भगवान को खिला पिला के अच्छी तरह से खाली पेट आके। लेकिन जगन्नाथपुरी में एग्जैक्टली उल्टा होता है, जगन्नाथपुरी में हजारों पंडा लोग होते हैं जो खाना बनाने में किचन में आते हैं, उनको लक्ष्मी जी के सेवक मानते हैं। वो लक्ष्मी जी के सेवक के रूप में उनके बहुत सारे परिवार हैं ऐसे जो लक्ष्मी जी के सेवक हैं। वो पीढ़ी पीढ़ी से लेके जितने पुष्ट होते हैं ना, जैसे कि आपके बेटा आपके बेटा आपके बेटा, जितने भी पीढ़ी होते हैं उतने सभी लोग जनरेशन के अंदर वो किचन में सेवा करते हैं। तो वो लोग सुबह पूरा खाना पीना खा के पेट फुल करके किचन में आते और उसके बाद भगवान को खाना बनाते, ये उनकी विशेषता है। बाकी सब जगह भी खाली पेट करना पड़ता है। हमारे घर पे भी हम लोग पहले भगवान को बनाते हैं, फिर भोग लगा के फिर खाते हैं। जगन्नाथपुर में पूरा खाना पीना खा के आते हैं फिर खाना बनाते हैं। आप अंदर जाके देखना चाहिए कितना सुंदर किचन है, बहुत सुंदर। 7-7 200 चूल्हा है उसका। और जगन्नाथपुरी मंदिर की खासियत ऐसी है क्योंकि भगवान वहां भोजन करने को आते हैं और दिन भर उनका 56 भोग चलते रहता है। इसका मतलब ये नहीं, पहले मुझे गलतफहमी थी कि एक साथ 56 खाते होंगे, ऐसा नहीं है। 56 प्रकार के आइटम जो है वो सुबह से लेकर रात तक वो पूरा कर देते हैं। लेकिन हर एक आइटम जो होता है वो इतने इतने बड़े मटके में होता है, एक प्लेट एक चम्मच में नहीं होता है। एक ऐसे ऐसे मटके बड़े बड़े, उसमें सब्जियां होती है, उसके अंदर स्वीट होता है, उसके अंदर खीर होती है, उसके अंदर दाल होती है, उसके अंदर क्या क्या अलग अलग प्रकार के जगन्नाथपुरी वाले स्पेशल उनकी मिठाइयां होती है। और 7200 चूल्हा में ऐसे कहा गया है कि 72,000 किलो का चावल रोज पकता है वहां पर, और 10,000 से ऊपर लोगों को अन्न छत्र में दाल चावल खिलाते हैं। उसकी भी एक लंबी कहानी बताएंगे आपको टाइम मिलेगा तो आज। और इतना राइस वहां पर बनता है, इतना राइस बचता है सब पंडा लोग सब लोग प्रसाद खाने के बाद भी, कि जगन्नाथपुरी में जितने होटल हैं, चाहे वो वेजिटेरियन होटल होंगे, मारवाड़ी के होंगे, नॉन वेज होंगे, मछली वाले होंगे, समुद्र किनारे में होंगे, कहीं भी कुछ भी होगा, सब जगह पर जगन्नाथ मंदिर का चावल ही मिलेगा आपको राइस प्लेट के अंदर। आप कहीं भी खाना खाने जाओ, नॉन वेज खाने जाओ, वेज खाने जाओ, इधर भी जाओ, चावल आपको मिलेगा जगन्नाथपुरी मंदिर का महाप्रसाद। ढाबे में मिलेगा, रस्ते पर, सब जगह पे। ऊपर उसके बाद में जगन्नाथपुरी के मंदिर के बाहर बहुत बड़ा एरिया है, वहां पर भी वो मटके में बेचने को रखते हैं, आप वहां पर खरीद के खा सकते हैं, इतना वहां पर समृद्धता है। तो जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ की विशेष कृपा ऐसी है कि जगन्नाथपुरी के अंदर ऐसा कहा गया है कि 84 लक्ष योनि जो है ना, मतलब जितने भगवान ने जीव बनाए हैं, जाति बनाए हैं, इतना प्राणी बनाया है, कीटक बनाया है, पेड़ बनाया है, और देवता बनाए हैं, और क्या क्या भगवान ने जितना जीव बनाया है, वो अगर सारे जीव इकट्ठा होकर जगन्नाथपुरी में आएंगे ना तो जगन्नाथपुरी में भोजन की कमी नहीं होगी। ऐसा है विशेषता, ये जगन्नाथपुरी की विशेषता है। वहां पर कोई आदमी कभी भूखा नहीं रहता है, गरीब से गरीब रहेगा उसके जेब में पैसा नहीं रहेगा, खाना मिलेगा उसको, स्वयं भगवान की कृपा है, भगवान खुद खाते हैं सबको खिलाते हैं। और वहां की विशेषता यह है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की छाया जो है कभी जमीन पर नहीं गिरती है। शिखर की छाया, सूरज ऐसा भी आएगा तो हमारी छाया कैसे होती है, यहां से ऐसे लेकर ऐसे गिरती है, ऊपर जाएगा तो छाया ऐसे नीचे आती है, यहां से आएगा तो यहां जाती है, छाया भी घूमते रहते हैं सूरज के अनुसार उल्टी तरफ। लेकिन जगन्नाथपुरी में कभी भी जगन्नाथपुरी के शिखर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है, इसे आपको जाके देखना पड़ेगा, फिर आपको मालूम पड़ेगा, ऐसे जगन्नाथपुरी की महानता है। और क्या कहा मैंने आपको, कहानी बाद में बताऊंगा, कौन सी कहानी थी, हाँ क्या जा खिचड़ी खिचड़ी की कहानी। तो जगन्नाथपुरी में एक बार एक मुसलमान औरत थी, जगन्नाथपुरी में बहुत भगवान के भक्त है, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो एक बड़ी बूढ़ी जगन्नाथ की भक्त थी, वो मुसलमान थी फिर भी जगन्नाथ की बहुत भक्त थी। उसने अपने घर में ना खिचड़ी बनाया दाल और चावल का, और वो खिचड़ी बड़े प्रेम से वो मंदिर में लेके आई कि भाई पुजारी लोगों को देगी, भगवान को अर्पण करो, मैंने बनाया भगवान के लिए। तो जैसे ही वो आई तो पुजारी ने उसको भगा दिया, तुम क्या कहते हैं ये इस जाति के लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी आपको, ये आपका हाथ के खाना तो अशुद्ध मानते हैं, हम लोग भगवान को ऐसे खिलाएंगे, चले जाए ऐसे। तो भगा दिया उसको जगन्नाथ पंडाओं ने, जब भगा दिया तो उसको बहुत दुख हुआ, बहुत प्रेम था जगन्नाथ के ऊपर उसका। तो जगन्नाथ ने स्वीकार नहीं किया, सोच के वो दुखी हो गई और घर पे चली गई। उसका घर जो है ना जगन्नाथपुरी के बॉर्डर पे था, एकदम दूर था बहुत। तो जब जगन्नाथपुरी में दोपहर का भोजन लगाने का समय आया तो जगन्नाथ को रहा नहीं गया कि मेरी एक इतनी सुंदर भक्त थी, वो आई थी दूर से, बेचारी बुढ़ी गरीब बेचारी इतना प्रेम से बना के लाई थी, ये मेरे पुजारी ने सब उसको भगा दिया, भगवान तो भगवान ही है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही भोग लगा भगवान को, पर्दा बंद हो गया, जगन्नाथ भगवान वहां से गायब हो गए। सीधे एक बालक का रूप धारण किया उन्होंने, छोटा सा बालक का, और वो बुढ़िया के घर में पहुंचे। बोले मैया मैया बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना है क्या? बहुत बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आपके घर से, कुछ खाना खिलाओ, भूख लग रही है। तो बुढ़िया रो रही थी, लेकिन बालक को देखिए बहुत खुशी हो गई उसको, बहुत आनंद का अनुभव हुआ। एकदम बालक को देखा, एकदम प्रेम जागृत हो गया उसके मन में, वात्सल्य जागृत हो गया, मदरली अफेक्शन। बोले बेटा हाँ अभी बहुत सिंपल खाना है आपके लिए, बना के रखा था मैंने, लेकिन वो पुजारी ने मना कर दिया, तो मैं क्या करूं? वो चलेगा क्या आपको? हाँ कुछ भी चलेगा भैया, खिला दो। तो जगन्नाथ बालक बन के घर पे गए और बुढ़िया ने उसको प्रेम से बिठा बिठा के अपने हाथ से खिलाया उसको। जगन्नाथ भगवान दोनों हाथ से खाया पूरा ऐसे। बहुत देर हो गई, उतने में मंदिर में घंटी बजी। कौन सी घंटी? पता है ना आपको भोग लगाते कैसे है? आपको पता होना चाहिए भोग कैसा लगता है। भोग लगने समय थाली बनाते हैं भगवान की, वहां पर थाली नहीं होती ना, हमने कहा ना मटके बड़े बड़े होते हैं, तो सब मटके रखते हैं, तुलसी डालते हैं उसके अंदर, और पर्दा बंद कर देते हैं, और आधा घंटा तक जगन्नाथ का पर्दा बंद रहता है। मतलब क्या? भगवान को खाना खाने का टाइम देते हैं कि अब खाओ आराम से। वो भी हमारे जैसे ही है। आप बोलेंगे भगवान को ना भोग दिखाना है, दिखाना है, ऐसा लोग बोलते हैं। नहीं भाई, तो दाखवायचा है, दाखवायचा काय, त्यांना खायचं पण असतं ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दिखाते तुरंत निकाल लेते हैं भगवान, अरे खाने दो टाइम हो गया एकदम। ऐसा नहीं होता है, वो पूरा आधा घंटा उनको प्रेम से जगन्नाथ को खिलाने को पिलाने को देता है, और सब जगह सब मंदिरों में यही विधि है। तो शायद आधा घंटे का ऊपर समय हो गया होगा, तो पर्दा खोलने के पहले ऐसा कोई घुसते नहीं अंदर से 10 मिनट। वो किसी के घर में आपको जाना है तो आप नॉक करेंगे ना पहले, सर कैन आई कम इन? तो वैसे वो घंटी लगाते हैं, हम लोग बेल दबाते हैं, वो घंटी लगाते हैं। घंटे दबा के भगवान को बोलते हैं, भगवान अभी हम खोलने को जा रहे हैं, अभी आपका खाना फिनिश हो गया ना, अभी हम लोग खोलने जा रहे हैं। तो वो जैसे वहां घंटी बजती है, तो जगन्नाथ जो बालक के रूप में बुढ़िया के घर में खिचड़ी खा रहे हैं, उसको अरे टाइम हो गया, तो पर्दा खोलेंगे मुझे वहां पर नहीं पाएंगे, तो बोलेंगे जगन्नाथ कहाँ गए। इसलिए वो वैसे ही खाते खाते दोनों हाथ में खिचड़ी लगा हुआ, मुंह में खिचड़ी लगा, ऐसे ही भागते हैं और तुरंत ऐसे खड़े हो जाते हैं, और घंटी बजती है और पर्दा खुलता है। तो सब लोग क्या देखते हैं, अरे वो जगन्नाथ के मुंह में यहाँ खिचड़ी इधर खिचड़ी, दोनों हाथ ऐसे कहना सामने ऐसे, दोनों हाथ ऐसे देखा, दोनों हाथ को भी खिचड़ी लगी हुई है, और वो देख रहे हैं कि हमारे किधर भी आइटम में किधर खिचड़ी नहीं है, खिचड़ी आइटम तो बनता ही नहीं है। तो उनको आश्चर्य हुआ, जगन्नाथ कहाँ गए खाने के लिए, जाओ खोज के लाओ किधर से खाना खा के आए। तो पूरे गांव में खोज किया गया, सब लोग खोजते रहे। तो बाद में मालूम पड़ा कि जगन्नाथ जी उसी बुढ़िया के घर पे गए थे, झोपड़ी में गए थे जिसको भगा दिया गया था। तो उनको ज्ञान हो गया, अरे हमने जिस बुढ़िया को भगा दिया ना, उसके घर में स्वयं जगन्नाथ गए और खिचड़ी खा के आए। हम लोग अपने आप को क्या समझते हैं, जगन्नाथ खुद जाके घर पे खा के आए। तो उन्होंने बुढ़िया को सम्मान के साथ बुलाया, बोले बुढ़िया हमको माफ कर देना भैया, कल से आप रोज खिचड़ी बना के लेके आना। उसके बाद में उसके मरने तक रोज वो औरत जो है खिचड़ी बना के लेके आती थी और वो भोग जगन्नाथ को लगाते थे। और आज भी उसी बुढ़िया की याद में जगन्नाथपुरी में रोज खिचड़ी का भोग भगवान को लगता है, और वो खिचड़ी 10,000 लोगों को मुफ्त में बांटी जाती है अन्न छत्र में। ये लीला है वहां। वैसे ही कथा वृंदावन में गोवर्धन में अपने जो गोपाल जी हैं उनकी भी कथा ऐसी है। ऐसी मुसलमान औरत थी और गोपाल जी को वो भोग लगाने के लिए खिचड़ी लेके आई थी, तो वहां के गोस्वामी लोगों ने उनको भगा दिया था। तो गोपाल जी जो है ना ऐसे खड़े ना, पता है ना आपको, बालक गोपाल जी, वो गोपाल जी वो बुढ़िया के घर पहुंचे, वो खिचड़ी खा के आए, दर्शन खुला तो गोपाल जी के हाथ में सब जगह ऐसे भी, इधर भी खिचड़ी लगी हुई है, इधर भी खिचड़ी लगी हुई है जब बंसी बजा रहे हैं। तो उसके बाद में बुढ़िया को लाया गया बड़े प्रेम से, और रोज उसके हाथ से गोपाल जी को खिचड़ी खिलाई गई। आज भी जगन्नाथपुरी में सॉरी वृंदावन में गोवर्धन में आप जाएंगे गोपाल जी मंदिर में, रोज खिचड़ी का भोग लगता है। ये भक्तों के प्रेम की याद में भगवान सब आनंद लेते हैं। तो वो खिचड़ी जो है वो पहले हनुमान जी को खिलाते थे, और खा के वो बोर हो गए थे, अभी उनको रोज 56 भोग जो है वो मिलता है। और 56 भोग का सिस्टम कैसा है, सुबह से लेकर एक आइटम बनता है और गिनती करके 56 आइटम रात तक उनको भोग लगाते, और सिस्टम उसकी ऐसी है कि वो भोग लगाते समय जब भोग बनता है ना दिन भर बनते रहता है, उनके पुजारी लोग बदले होते जाते हैं लेकिन फिर भी आइटम कंटिन्यूस बनते रहते हैं, कुछ टाइम नहीं उसका, एक आइटम बन गया, चार बन गए, पांच बन गए, तो पांच चले जाते हैं और जाने का एक सिस्टम है उसका बड़ा। क्या सिस्टम है? पूरा रसोई घर से भगवान के मंदिर तक जो रास्ता है, भगवान के गर्भगृह तक अंदर तक जो रास्ता है वो पूरा कवर्ड है, एकदम पूरा दोनों तरफ से बंद है और ऐसा पूरा रास्ता बना हुआ है, ऊपर से भी बंद है। एक सूरज का किरण भी वहां पहुंचना नहीं चाहिए, ऐसा उसका नियम है। अगर सन रे उस पर गिर गया, सूरज का किरण गिर गया, तो वो खाना बाध कर देते हैं, वो भगवान को लगा नहीं सकते, इसलिए उस पर गिरना नहीं चाहिए, इसलिए पूरा छत के बांध कर रखा है। और जब भगवान का भोग किचन से निकलता है भगवान को लगाने के लिए, तो सब लोगों का जो आना जाना है वो बंद कर देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, सब लोगों को रोक देते हैं। और सबसे पहले आगे म्यूजिक बजती है, आगे सैनिक निकलते हैं, पहले जो गार्ड होता है ना गार्ड, सबको हटा देते हैं वहां से, वो आगे चलते हैं, उसके पीछे ढोल वाले, ताशे वाले, पेपेरी वाले, सनी वाले सब बजाते बजाते बजाते, कुछ लोग नाचते हैं, कुछ लोग बजाते हैं, और उसके पीछे ढका हुआ जो बड़ा बर्तन है उसको गाड़ी में रख के ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके पीछे भी गार्ड होते हैं और म्यूजिशियन होते हैं बजाने वाले, और इस तरह से वो सब ट्रैफिक बंद करके भगवान के मंदिर तक पहुंचाते हैं और पर्दा बंद करके उनको भोग लगा देते हैं। फिर कुछ देर बाद कुछ बना तो फिर वापस वही ट्रैफिक बंद, पुलिस आगे, म्यूजिक वाले पीछे, फिर भगवान का भोग, फिर म्यूजिक वाले, फिर सिक्योरिटी गार्ड, ऐसे करके निकलते हैं और कोई समय नहीं उनका। हमारे मंदिर में कैसा होता है, 12:30 को राजभोग, 9 बजे बाल भोग, सुबह मंगल भोग, दोपहर को उत्थापन भोग, शाम को संध्या भोग, रात को शयन भोग, ऐसे फिक्स टाइमिंग है उसका, सोने का टाइम फिक्स है। वो जगन्नाथपुर में कुछ नहीं है, जब बनेगा तब खाते रहेंगे हमारे ठाकुर जी, हाँ बड़े प्रेम से खाते रहते। और पता है विशेषता क्या है, ये खबर सुन के आपको बहुत खुशी होगी, सब लोगों को, जो वैष्णव बने हुए हैं, जो वैष्णव नहीं बने हुए हैं, सबको सुन के खुशी होगी, क्योंकि वैष्णव जब बनते हैं ना आप लोग, हम लोग सब कोशिश करते हैं वैष्णव बनने का, तो हमको सबको एकादशी का उपवास करना पड़ता है, पड़ता है ना। हमारे बच्चे लोग बोलते हैं ये एकादशी क्यों बनाई भगवान, हाँ खाने को नहीं मिलता है, क्यों बनाई, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा नहीं खाना है। तो जगन्नाथपुरी में एकादशी देवी को मंदिर के पीछे उल्टा टांग के रखा है, तो सामने नहीं आने का, इधर जगन्नाथपुरी में कोई जगन्नाथपुरी में एकादशी को उपवास नहीं करता है। ऑफकोर्स हम लोग अपना उपवास करते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई उपवास नहीं करता है, क्योंकि एकादशी का छोटा सा मंदिर, इतना सब देवी है, उसको उल्टा टांग के बांध के रखा है पीछे, उसको फूल चढ़ाते हैं लेकिन उल्टा ही चढ़ाते हैं। और क्या विशेषता है जगन्नाथपुरी की। और अभी जो उत्सव है आज का, आज के दिन सेकंड लास्ट डे है, कल के दिन गुंडीचा मार्जन है। अभी गुंडीचा मार्जन का भी लंबी कथा है, अभी कितना बताएं आपको, क्या कर करके बताएंगे आपको। एनीवेज लास्ट कथा जब हमने बताई थी आपको, तो स्नान यात्रा की कथा बताई थी, है ना। स्नान यात्रा के दिन भगवान पब्लिक में स्नान करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो उनको सर्दी लगती है और बुखार आता है, फिर 15 दिन वो अंदर कमरे में बंद रहते हैं, एडमिट, जड़ी बूटी कषाय सार सब जड़ी बूटी फल फूल खाते हैं, और ऐसे कहते हैं कि वो 15 दिन में बीमारी के बहाने अपने पत्नी के साथ में एकांतवास करते हैं, उनको लक्ष्मी के साथ में हमेशा पब्लिक के सामने खड़ा रहने का, लक्ष्मी को मिलने को समय नहीं मिलता है, तो 15 दिन में वो CL ले लेते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, PL प्रिविलेज लीव, और अपनी पत्नी के साथ टाइम बिताते हैं। एक कारण अंदर का ये है, बाहर का बीमारी का कारण है। और रथ यात्रा के समय पहले दिन जब रथ यात्रा निकलनी होती है, उसके पहले दिन भगवान जब बीमारी से अच्छे होने लगते हैं, तो उनको ना दिल में आता ऐसा विचार कि मेरे वृंदावन के जो वासी हैं ब्रजवासी, उनका अभी सेवा लेना चाहिए, बहुत दिन से उनके पास गए नहीं, क्योंकि जगन्नाथपुरी की एक विशेषता है। जगन्नाथपुरी क्या है, जगन्नाथपुरी के भगवान कृष्ण भगवान है द्वारका के राजा भगवान है वो, लेकिन वृंदावन की याद में तड़प रहे हैं। जब भगवान वृंदावन से गए ना, तो मथुरा गए, मथुरा से युद्ध हुआ उनका जरासंध के साथ, बहुत बार युद्ध हुआ तो बोर हो गए सब लोग, बोले रोज रोज का झगड़ा, रोज युद्ध होता है, रोज मारामारी होती है, हमारी जनता सब नाराज हो गई है, तो बोले हम तो दूर जाके रहेंगे, ताकि मथुरा में बार बार ये आक्रमण होता है जरासंध का, वहां पर शांति से रहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं जो जलते हैं भगवान से, बोलते हैं कि भगवान जरासंध से डर गए और डर के मारे वो समुद्र में जाके छुप गए, क्योंकि समुद्र का पानी को पीछे ढकेल के वहां पर द्वारका नगरी बनाई गई विश्वकर्मा द्वारा। तो जो भगवान का द्वेष करते हैं वो बोलते हैं कि भगवान जरासंध से डर के समुद्र में जाके छुप गए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने मर्जी से गए। बहुत बड़ा राज्य बनाया उन्होंने द्वारका में, लेकिन द्वारका में जाने के बाद भी उनको वृंदावन के भक्तों की बड़ी आदतें थी। अपनी माता यशोदा देवी, उनका मक्खन, उनका प्रेम से खिलाना, गोपियां उनके साथ नाच करना, अपने सखा उनके साथ मक्खन चोरी करना, गुल्ली डंडा खेलना, बहुत उनकी आदत थी। बहुत विरह में तड़पते थे वो कि मेरे सखा कैसे हैं, मेरे सखियां कैसे, मेरे माता पिता कैसे। तो वो जो भगवान जगन्नाथ के द्वारकाधीश भगवान जगन्नाथपुरी में आके रहते हैं और अपने ब्रजवासी भक्तों की याद करते, मतलब विरह में रहते हैं, इसलिए उनका ये स्वरूप है। ये भगवान का महाभाव स्वरूप है जिसमें उनको वृंदावन के भक्तों की याद आ रही है। है द्वारका के भगवान, ऐश्वर्य संपन्न भगवान है, लेकिन याद आ रही है वृंदावन के लोगों की और रह रहे जगन्नाथपुरी में। और आपको शायद पता नहीं होगा, और कुछ पता भी हो सकता है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में काम करते हो, आप लोगों को बहुत नॉलेज रहता है। आपने सुना है कभी जो मरीज होता है ना, बहुत दुखी होता है, डिप्रेशन में होता है, उसका एक खासियत है, डॉक्टर सावे को मिलेंगे ना आप, डॉक्टर निरोगढ़ को मिलेंगे, सावे को मिलेंगे, त्रिवेदी को मिलेंगे, वही पूछो उनको आप कि डिप्रेशन का होता है ना मरीज, उसको कहते हैं हिंदी मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन। वो मरीज हमेशा ओवरवेट होता है, उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है मालूम है आपको? यस, खाता ज्यादा क्यों है? लेकिन वही पूछ रहा हूं मैं, ज्यादा खाता क्यों है वो? नहीं नहीं नहीं, मन का तनाव को कम करने के लिए वो खाते रहता है हमेशा, ताकि थोड़ा तनाव हल्का हो जाए उसका। इसलिए भगवान भी जब उनको वृंदावन के भक्तों की याद आके वो तड़पते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं, तो जगन्नाथपुरी में आके बहुत खाते हैं। इट इज अ कॉमन सिम्टम, डिप्रेस्ड पेशेंट, ही ओवर ईट्स एंड इज ऑलवेज ओवर वेट। तो साइकेट्रिस्ट जो है उसको देख के पहचानता कि ये डिप्रेशन में है, क्योंकि तो वो इतना मोटा है, चेहरा लटका हुआ है उसका, शरीर बहुत मोटा हो गया है, क्योंकि वो पड़े पड़े बहुत खाना खाता है और खाना खा के अपने दुख को भूलने का प्रयास करता है। दिस इज कॉमन थिंग। अगर आप बहुत दुखी होंगे और आपको अच्छा खाना मिला तो मन आपका बहल जाता है। तो मन को बहलाने के लिए भगवान द्वारका छोड़ के जगन्नाथपुरी में आके रहते हैं और बहुत सारा खाना खाते हैं अपने वृंदावन के भक्तों की याद में। लेकिन 15 दिन बीमार होने के बाद में उनको दिल करता है अभी मैं यहां से जाऊंगा वृंदावन में। तो वहां पर एक जगह है 10 किलोमीटर के आगे, उसका नाम है गुप्त वृंदावन, उसको कहते हैं गुंडीचा मंदिर। वो वृंदावन का प्रतीक माना गया है, जहां पर वृंदावन के भाव से वहां के डिफरेंट जाति के लोग हैं वो वहां पर रहकर 40 साल में 9 दिन जब वहां जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में बैठकर जगन्नाथ पहुंचते हैं तो 9 दिन उनकी सेवा करते हैं वृंदावन के भाव में। तो जगन्नाथ मंदिर में जो द्वारका का प्रतीक है, वहां के भक्तों को जगन्नाथ भगवान बोलते हैं कि मुझे ले चलो, मुझे अभी रथ में बैठकर घूमने का इच्छा कर रहा है, मैं भाई बहन को लेकर जाऊंगा अभी। उसके पहले दिन जब भगवान अनाउंस करते कि जाना है, तो जगन्नाथपुरी के जो भक्त हैं वो खबर करते हैं कि भगवान आने वाले हैं। तो वहां के जो भक्त है गुप्त वृंदावन के गुंडीचा मंदिर के, वो गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते हैं, पूरा मंदिर धो डालते हैं उसको, इतना धोते हैं कि एक एक कण जो मट्टी का है वो निकाल लेते हैं, पहला झाड़ू से, फिर धोती से, फिर कपड़े से, और उसके बाद में पानी से धोते हैं और फिर कपड़े से पहुंचते हैं। ऐसा करके बहुत चमकाते हैं मंदिर को कि भगवान आएंगे अभी और रहेंगे 9 दिन तक। तो उसी के याद में गुंडीचा मार्जन जो है वो हम लोग करते हैं, उस भाव में करते हैं कि भगवान आएंगे, भगवान अभी अपना मंदिर छोड़ के घूमने आने वाले हैं, उनकी नजर सब जगह पड़ेगी ना, रास्ता में पड़ेगी, जहां रहेंगे वहां पर पड़ेगी, तो जहां पर भी उनकी नजर पड़ेगी वहां पर कोई कचरा नहीं होना चाहिए, सब स्वच्छ होना चाहिए, इस भाव से वो साफ सफाई करते हैं। ये मत समझो कि म्युनिसिपैलिटी को हेल्प कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी कुछ करती नहीं है, इसलिए हम लोग साल में एक बार म्युनिसिपैलिटी को हेल्प करने के लिए रस्ते पे उतरते हैं। नो 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 सर, हम लोग ये जानते हैं कि भगवान अभी मंदिर से बाहर निकलने वाले हैं, सफर करने को निकलेंगे। तो अपने सफर करने आदमी कैसे सफर करता है, यहाँ देखता है, फिर वहां देखता है, फिर यहाँ क्या है देखते हैं, वहां कौन है देखते देखते ना, हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में तो सब जगह देखते हैं, गाड़ी में बाहर क्या दिखता है, बस में बैठे तो बाहर देखते हैं, बैलगाड़ी में बैठे भी बाहर देखते हैं, सब जगह बाहर देखते हैं, आनंद लेते जाते हैं हम लोग। वैसे भगवान जब अपने रथ पर बैठकर बाहर निकलते हैं तो वो आनंद लेते हैं सब चीज का। तो उस समय जब राजा बाहर निकलता है तो उसे कहीं कचरा दिखना नहीं चाहिए, उस भावना से राजा को कहीं भी दिखने पर कचरा दिखना नहीं चाहिए, इस भाव से भक्त लोग झाड़ू लगाते हैं और साफ कर देते हैं, चाहे रास्ता हो या किसी का रास्ता हो, किसी घर का आंगन हो, भक्त लोग साफ कर देते हैं। हम भी कल साफ करेंगे अपना हॉस्पिटल इसी भाव से कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा होगी, हमारे हॉस्पिटल में भी कहीं भी जाएंगे तो उनको साफ दिखना चाहिए, राजा है वो, जगन्नाथ, जगत के नाथ है वो। तो उस भाव में कल के दिन, कल की तिथि में गुंडीचा का मंदिर जो है जगन्नाथपुरी में वो साफ किया जाता है, वही दिन हम लोग यहाँ पर हॉस्पिटल साफ करते हैं उसी भाव से, ताकि वहां का आनंद भी आपको थोड़ा अनुभव करने को मिलेगा। फिर उसके शाम को भगवान अपना अंतापुर जो अपना कमरा है वो छोड़ के बाहर आ जाते हैं और उनको एक ड्रिंक पिलाते हैं। वो ड्रिंक क्या होता है पता है? नारियल का बड़ा पानी का ऐसा होता है, डाब बोलते हैं उसको, डाब आप लोग क्या बोलते हैं उसको? नारियल का शहाड़ा मराठी बोलते हैं, शहाड़ा नारियल का पानी का होता है ना वो, उसमें डालते हैं कपूर, और कपूर डालने से वो नशे वाला पानी बन जाता है। तो रात को शाम को जब भगवान पहली बार अपना कमरा छोड़ के बाहर निकलते हैं तो उसके पहले भगवान को पेंट वेंट करके मेकअप करके बहुत चमका देते हैं पूरा। वे अब जो आप बीमार हो जाओ, जब आपको डिस्चार्ज लेना है तो डिस्चार्ज के समय आप सही रहेंगे ना, अच्छे होंगे तो डिस्चार्ज मिलेगा आपको। तो डिस्चार्ज के समय मरीज का दाढ़ी वाड़ी करके उसको अच्छा बाल बाल बना के चमका देते हैं, ताकि जब घर जाएगा तो ऐसा दाढ़ी लटका के बीमार हो तो अच्छा हो गया ना अभी। तो उस खुशी में डिस्चार्ज के समय घर से कपड़े मंगाते हैं इस्त्री वाले, अच्छी तरह से स्नान वान करके दाढ़ी करके पूरा अच्छे बाल बना के उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, ताकि घर जाने के समय वो एकदम अच्छा रहेगा। अब याद रखना, कभी भी खुद भी एडमिट हो गए ना, डिस्चार्ज के समय अच्छा चकाचक होकर घर जाना। तो इसलिए जब भगवान अपने बीमार कमरे से बाहर निकलते हैं तो उनको अच्छी तरह से अभी तो पेंट करते हैं, तो लेकिन पूरा मेकअप वेकअप करके फूल लगा के पूरा उसको स्वच्छ एकदम फ्रेश बना के बाहर लाते हैं। भगवान भी ऐसे मूड में है कि अभी कल हमको जाना है रथ में घूमने के लिए और हम वृंदावन जाएंगे, अपने वृंदावन वासियों को मिलेंगे, उनका सेवा लेंगे, उनका आनंद लेंगे, उनका संग लेंगे, तो बड़े खुश रहते हैं वो। उस समय उनको नारियल के पानी में कपूर डाल के पिलाते हैं तो भगवान को नशा आता है एकदम। ऐसा नशा हमारा जैसा नहीं, बियर का और टाड़ी और माड़ी का नहीं, प्रेम का नशा है वो। ये भाव है उनका कि कल जाएंगे हम, घूमने जाएंगे, अपने ब्रजवासियों को मिलेंगे, वहां पर आनंद लेंगे। तो वो भाव में वो इतने खुश हो जाते हैं कि अपने जहां पर खड़े होने की जगह है ना वहां से उतर जाते, नीचे उतर जाते हैं, दो कमरे नीचे स्टेप उतरते हैं नशे में आनंद में, और राख बस होते नहीं है। अभी आपके घर में बच्चे होते ना, उनकी पिकनिक होती है, रोज सुबह 6 बजे उठ रहे उठ रहे उठ रहे, बस आ गई घंटी बज गई तभी बच्चा उठता नहीं है, लेकिन जिस दिन पिकनिक होती है उस दिन रात बस होता ही नहीं, तो उठाने का सवाल ही रहता है उसको। उस दिन कोई धक्का मुक्की कुछ नहीं होती है, अपने आप ही वो देखता है मम्मी कितनी बदले, आता एक बदला है झोपून जा, मम्मी कितनी बदले, 2 बजले, इतना लवकर का है, मम्मी पिकनिक दी आए 7 वाजता जाए, तो ऐसे रात भर जगेगा वो। तो ऐसे भगवान को रात भर नींद नहीं आती है और भगवान के भक्त भी तड़पते रहते हैं, 15 दिन मंदिर बंद है, भगवान का दर्शन नहीं कुछ नहीं, तो वहां भीड़ जमा होती है। भगवान आमतौर पर साल भर क्या करते हैं, खाली दर्शन देते हैं, लेकिन इस दिन साल का एक दिन होता है ऐसा एक दिन, इस दिन भगवान 2 स्टेप नीचे उतरते हैं जहां पर खड़े हैं और पूरी नशा में चूर होकर अपने सारे भक्तों को गले मिलते हो। ऐसा कोई भगवान दुनिया में नहीं है जिसको आप जाके गले लगा सकते हो। सब मंदिर को दूर से दंडवत प्रणाम करते हैं हम लोग, लेकिन उस दिन भगवान रात भर सब लोगों को गले मिलते हैं, रात भर सोते भी नहीं है, उनकी सीधे मंगला होती है तभी वो सोते नहीं, वो मंगला के बाद में भी वो सबको गले मिलते रहते हैं, और उसके बाद नशे में झूलते हुए बाहर निकलते हैं, उसको कहते हैं पांडी विजय। पांडी मतलब झूल झूलते झूल झूल के, क्योंकि वो इतने मोटे हैं बड़े शरीर के हैं कि 125-150 लोग भी पड्डा लोग उसको उठा नहीं सकते, इसलिए उनको कपड़ा बांधते पूरा शरीर के अंदर, हाथ में पांव में सब जगह पर कहीं घिसटते हुए उनको जख्म ना हो जाए, और दोरी बांधते हैं और 150 लोग उनको खींचते हैं, तो खींचने से समय वो ऐसे ऐसे झूल झूल के उनको बाहर लेके आते हैं। तो लोग सोचते हैं कि वो भारी है, हम खींच रहे हैं तो झूल रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो वृंदावन जाने के आनंद में झूल रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम उनको उठा के खींच के लेके आ रहे हैं, नहीं, वो अपने मर्जी से झूलते झूलते बाहर निकलते हैं। सबसे पहले बलदेव जी बाहर झूलते आते हैं नशा में चोर होकर, फिर चक्र आता है जो जगन्नाथ का बॉडी गार्ड है, लेकिन उस दिन पहले निकलता है और सुभद्रा जी के रथ पर जाकर सवार हो जाता है, क्योंकि सुभद्रा जी लेडी है ना, लेडी सुभद्रा माता जी, तो बाहर निकलते तो माता जी को अपना गार्ड दे देते हैं भगवान कि मेरा जो बॉडी गार्ड है तुम्हारे पास खड़ा करता हूँ, तुम्हारे रथ में वो रक्षा करेगा। तो जब पहले बलदेव जी को रथ पे खड़े कर देते हैं, फिर चक्र को उठाकर खड़े कर देते हैं, उसके बाद में सुभद्रा जी को उठाकर वहां खड़े करते हैं, लास्ट में जगन्नाथ जी आते हैं, बड़े झूलते हुए आते हैं बड़े प्रेम से, और रथ पे चढ़ते वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, सब पंडालों को खाली देते हैं उनको, उनका वहां विशेष रस है, बाकी सब जगह पंडा लोग ऐसे प्रेम प्रेम से पुजारी लोग सेवा करते भगवान की, लेकिन यहाँ पर ऐसा हाथ है ना जगन्नाथ का ऐसा, उस पर ऐसा हाथ रख खड़े होते क्या है, कालिया है हमारा क्या है, प्रत्यर्थ कब निकलेगी बोले कालिया जाने ऐसे उनका फ्रेंडली मूड है उनका। तो वो जैसे रथ के ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं जगन्नाथ जी ऐसा नशा में चोर होकर गिर जाते हैं ऐसे, तो वो तुरंत बांसुरी निकालते अपने बैग में से और वो भगवान के ऊपर घुमाते हैं, हे जगु हे कालिया ये सोने का समय नहीं है, तुम जा रहे हैं ना जगन्नाथपुरी से मायापुर में अपना वृंदावन में ब्रजवासी को मिलना है ना, माता यशोदा के हाथ का मक्खन खाना है कि नहीं, ऐसा घुमा घुमा के गाली बकते हैं। फिर जगन्नाथ जी उठ जाते हैं वापस, जैसे वृंदावन की सुनते हैं तो फिर उठ जाते हैं, फिर आ जाते फिर पर गिर जाते हैं, फिर दोबारा बंसी घुमाते हैं मोरपंख घुमाते हैं, वृंदावन की याद दिलाते हैं, पता है मोरपंख कहाँ यूज करते हैं वृंदावन में, या आपको पुंडली बजाना है वहां पर जाके बजाओ, तो फिर उठ जाते हैं, आखिर में जाके खड़े हो जाते हैं। साल भर वो एक जगह पे खड़े होते हैं, लेकिन इस दिन नशा में चूर होकर उनको दीवार पे टेक के ऐसा खड़ा करते, क्यों? क्योंकि वो नशे में है और फिर उनका रथ यात्रा होता है। उस दिन जब वो पहुंचते रथ पर तो जगन्नाथपुरी का जो राजा है गजपति, उसका टाइटल उसका क्या है गजपति, वो राजा वहां पर आता है और रथ के सामने झाड़ू लगाता है। तो बहुत बड़ी लंबी कहानी है, वो आपको बताएंगे कभी, आप जरा लिख के रखना, मैं क्या क्या बता रहा हूँ ना आगे बताऊंगा, वो लिख के रखना याद करना, मैं बताते रहूंगा आपको। तो राजा उस परंपरा के अनुसार राजा होने पर भी सोने की मूठ वाली झाड़ू से, एक्चुअल सोना गोल्ड उसकी जो हैंडल से झाड़ू लगाते रथ के सामने पूरा भंगी बन के, और फिर जगन्नाथ की पूजा करता है, बलदेव की पूजा करता है और सुभद्रा की पूजा करता है, पूरी अच्छी तरह पूजा करने के बाद में उनकी प्रदक्षिणा करता है, और फिर पंडा लोग जो है वो है ना क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है उसका, गोंग कहते हैं उसको, गोंग उसको जगांट कहते हैं, क्या टकाना टकाना बजाते हैं ना, एक दंडी हाथ में रहती है और एक गोल रहता है उसको बजाते रहते हैं, तो 150 लोग साथ में बजाते हैं, उनका एक फर्स्ट क्लास म्यूजिक होता है। जैसे ही म्यूजिक चालू होता है 150 लोगों का रथ यात्रा आरंभ हो जाती है, और सब लोग रथ को खींचते हैं दूर से, और फिर उसका नियम ऐसा है, एक बड़ा रोड है उसका नाम है ग्रैंड रोड, वो नाम ही रखा है ग्रैंड रोड क्योंकि वो इतना बड़ा है कि शायद उसका कितना फीट होगा, वो आई डोंट नो 300-400 फीट तो होगा उतना लंबा, हमारे यहाँ बॉम्बे में 60 फीट का रास्ता मतलब बहुत बड़ा रास्ता मानते, वो इतना बड़ा रास्ता है, वो बड़ा बना कैसे उसका भी एक राज है, पहले वो छोटा था लेकिन आज वो 400 फुट का हो गया है। कारण क्या है उसका, तो जगन्नाथ जी रथ में बैठते ना तो लोग सोचते हैं कि हम उनको खींच रहे हैं, वो गलत फहमी है, वो जहां उनको जाना है वहां घूमते हैं, वहां मुड़ जाते हैं, कभी हमने अपने आंखों से देखा है रथ को ऐसे खींच रहे हैं लेकिन रथ यहां जा रहा है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि भगवान अपने मर्जी से अपनी दिशा चुनते हैं, और कभी कभी इस दुकान में घुस जाते हैं, तो गवर्नमेंट का ऐसा नियम है कि अगर जगन्नाथ का रथ भाई गलती से अगर किसी दुकान में घुस गया तो उस दुकान को गवर्नमेंट पूरा नया दुकान बना देती है और वो जगह पर उसका रोड बना देती है, ताकि जगन्नाथ को यहां से जाना है तो रोड इज नेसेसरी, तो रोड वाइडनिंग के चक्कर में वो दुकान उसको हटा देते हैं इसमें वो घुस गए रथ, और उस रथ दुकानदार को अच्छी जगह जमीन देकर उसका दुकान दूसरा दुकान बना देते हैं पास में, लेकिन वहां पर रास्ता बनता है, पर यहां घुस गए तो वो दुकान रद्द होके वहां पर उनको रास्ता बना देते हैं। ऐसे करके करते भगवान हर साल में यहां वहां बहुत जगह घुस के बड़ा 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 होते गया रास्ता, ग्रैंड रोड ऊपर गया वो, और उसमें 9 किलोमीटर का रास्ता है वो, और एक साथ जगन्नाथपुरी के मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक उस रास्ते में एक साथ में 10 लाख लोग खड़े रहते, वो दृश्य आपको देखना चाहिए। उस दिन में जगन्नाथपुरी में इतना आनंद होता है ना कि आपको लगेगा कि इतने सारे घर है, इतना छत है, इतना गैलरी है, इतना सा बरांडा है, हर एक छत पे चाहे वो स्लोपिंग में हो या फ्लैट में हो या ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो या कुछ भी हो, हर एक छत पर कुर्सी रखकर उस कुर्सी को रेंट पे बेचते हैं, और जितना जगन्नाथ मंदिर के पास में आपका छत होगा घर का उसमें 500 रुपया फिर 400 रुपया फिर 250 रुपया फिर 300 रुपया ऐसा रेंट होता है। और किसके लिए रेंट करते हैं उसको, जब जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर आएंगे तो वहां से गुजरेंगे बस इतना ही टाइम के लिए बैठने के लिए वहां पर 500 रुपये रेंट होता है, और एक एक इंच की जगह पर लोग वहां पर कुर्सी रख के उसको रेंट पे देते हैं, इतना लोग होता है वहां पर, इतना लोग होता है कि जगह नहीं होती है, तो सब घर के आंगन में गैलरी में हर एक मंजिल में हर एक छत पे हर एक स्लोप पे हर एक कोल पे सब जगह लोग बैठे रहते हैं, इतने लोग होते हैं। और हवा में ऐसे एक ट्रॉली पर रिकॉर्डिंग मशीन होता है गवर्नमेंट का, दूरदर्शन का होता ना क्रेन, वो क्रेन के अंदर एक ट्रॉली होता है बहुत दूर तक, वो हवा में ऐसे ट्रॉली पे उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि बाकी जगह नहीं कार खड़े रहने की, तो हवा में आके कैमरा मैन जो है उसका रिकॉर्डिंग करके उसका लाइव टेलीकास्ट जो है टीवी पर आता है जगन्नाथ पुरी के दिन। फिर जगन्नाथ को रथ को खींचते हैं, सबसे पहले बलदेव का रथ निकलता है, बीच में सुभद्रा का रथ निकलता है और लास्ट में जगन्नाथ का रथ निकलता है। और उसका नियम ऐसा है कि एक झटके में अगर खींचते खींचते वो निकल गए समझो, तो रथ तब तक चलेगा जब तक सूर्यास्त नहीं होगा। सूर्यास्त अगर हो गया बीच में तो वहीं पर रथ को रोक देते हैं, उसके आगे रथ का आगे आगमन नहीं होता है, उसके सूर्यास्त तक ही रथ खींचना है। सूर्यास्त अगर पहुंच गए पुंडीचा मंदिर में तो पहुंच गए, रथ यात्रा समाप्त हो गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक तार के अंदर बलदेव जी का रथ अटक जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता रहता है, कुछ ना अलग लीला होती रहा। तो कभी कभी जब हमने रथयात्रा अटेंड किया बहुत सारा, तो पहली बार जब गए थे तभी एक साथ में 5 घंटे में रथ पहुंच गया था स्ट्रेट। लेकिन दूसरी बार जब गए थे तो बलदेव जी का रथ जो है वो गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक तार में अटक गया था, फिर गवर्नमेंट के लोग आए, वो अपना क्रेन लेके चढ़े और उसको रिलीज करने लगे, तब तक सूर्यास्त हो गया था। सूर्यास्त हो गया मतलब स्टॉप, उसके आगे रथ आगे नहीं बढ़ेगा। तो तुरंत जब सूर्यास्त होता है और अगर जो रथ समझो पूरा पहुंचा नहीं है, तो तुरंत वहां पर 1 मिनट के अंदर सब पंडा लोग खाना लेके आते हैं, पूरा बड़ा बड़ा मटका में उनका भोग जो है। ऐसा भी हम लोग जाएंगे ना पिकनिक में तो अपना पैक करके लेके जाएंगे ना, ये ब्रेकफास्ट में, ये डिनर में, ये टाइम पास में, ठेपला सिंगदाना वेफर सब लेके आते ना, वैसा भगवान का भी पूरा बड़ी बड़ी पेटी होती ना वो उनके रथ में रखी रहती है, उनका वस्त्र पहनने का है, उनका क्या अलंकार है, ऐसे बड़े बड़े संदूक पेटी रथ में आते हैं, पहले भगवान के आ जाते हैं फिर लास्ट में भगवान आते हैं। बलदेव का अलग पेटी, सुभद्रा जी का अलग, जगन्नाथ जी का अलग, चक्र का अलग, सब पूरा रहता है और साथ में खाने के बड़े बड़े पेटी, उसके प्लेट सोने के और चांदी के भी साथ चलते रहते हैं। जैसे रथ रुक गया तुरंत वहां पर भोग आता है, पब्लिक में खड़े होते हुए भगवान भोग खाते हैं। और फिर जैसे भोग समाप्त होता है, सारे लोग जो है ना जो रथ में उनके चल रहे हैं पीछे पीछे खींचते खींचते, सब लोगों को रथ में चढ़ने का परमिशन है उस दिन। पंडा लोग हाथ पकड़ पकड़ के सब लोगों को रथ में चढ़ाते हैं और भगवान को गले मिलते हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा जी। बड़े प्रेम से पंडा लोग भी उनको पकड़ पकड़ के मिलो मिलो, जग्गू भैया से मिलो, कालिया से मिलो करके गले लगाते हैं सब लोगों को। बहुत बड़ा आनंद का अनुभव है, आपको पता नहीं मैं क्या वर्णन करूं आपको। जगन्नाथ जी जब गले लगाते हैं, हम लोग, मैंने लगाया हुआ है उनको, क्या अनुभव होता है आपको वहां जाके देखना पड़ेगा, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, इतना सुंदर अनुभव है। फिर सब लोग उतरते हैं, एक जगह से उतरते हैं, एक जगह चढ़ते हैं और जहां पर रुकते हैं फिर वहां से अगले दिन शुरू होती है यात्रा। और फिर वो जहां तक पहुंचते हैं नेक्स्ट यात्रा तक वहां पहुंच जाती है। और गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करने के पहले उस रात को भगवान रास्ते पर रुकते हैं और उस रात को वहां पर बड़ा महोत्सव होता है। वहां पर बहुत जगह जगह के लोग नृत्य करने वाले आते हैं, कुछ लोग आग के गोल में नृत्य करते हैं, आग को ऐसे हाथ में पकड़ते हैं और गोल गोल घुमा के नृत्य करते हैं, कुछ आग को पकड़कर, आग का जो मशाल है उसको पकड़कर, आग गोल में आग लगाते हैं उसको पकड़कर एथलेटिक्स करते हैं, मतलब क्या करते हैं, कसरत करते हैं बहुत, सब क्यों करते हैं, भगवान को रिझाने के लिए कि हमारे ठाकुर जी आए हैं, तो उनको मनोरंजन करने के लिए कोई गाते हैं, कोई नाचते हैं, कोई कसरत करते हैं, कोई गीत गाते हैं, तरह तरह प्रकार के कार्य होते हैं। और वो देखने के लोग फिर वापस छत पर जाके बैठ जाते हैं, सब जगह अपना ऑक्यूपाई करके छत पे धक्के पर सब जगह लोग बैठते हैं और रात भर उसका आनंद लेते हैं। और वो खत्म होने के बाद में फिर रात भर भगवान को लोग मिलते रहते हैं, ओवर नाइट भगवान को गले मिलते रहते हैं। फिर अगले दिन सुबह 10 बजे फिर दोबारा भगवान को म्यूजिक बजा के नृत्य करते हुए उनको उतारते हैं और उतार के फिर खींच खींच के गुंडीचा मंदिर में लेके जाते हैं, वहां पर उनको अपने स्थान पर बिठा देते हैं और भगवान 9 दिन वहां पर रहते हैं। अभी गड़बड़ होता है क्योंकि भगवान अपने भाई और बहन को बॉडीगार्ड को लेके चले गए ना, एक व्यक्ति बहुत नाराज है, कौन है वो, हाँ लक्ष्मी देव गए 15 दिन अंदर में रहे और उनको बिना बताए भाई बहन को लेके निकल गए, लक्ष्मी देव को बड़ा गुस्सा आता है। तो 5वें दिन ना लक्ष्मी देव अपने सब भक्त लोगों को लेकर गुस्से से निकल जाती है, देखती हूँ कहाँ गए, कहाँ जाके आनंद ले रहे हैं, बहुत गुस्से में जाती है। रात को ना आपने वो देखना चाहिए, वहां पर वो समारंभ इतना बढ़िया होता है कि रात के समय लक्ष्मी देवी के पालके निकलती है, उसके पंडा लोग म्यूजिक बजाते बजाते निकलते हैं और बीच रात में पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान जहां पहुंच गए गुंडीचा मंदिर में, और पहले जाकर वो जगह जगन्नाथ का रथ खड़ा है वहां पर गुस्से से देखती है। उसको उम्मीद है कि मैं आई हुई तो अपने जगन्नाथ मेरे पति हैं, मेरे को स्वागत करेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, ऐसी उम्मीद है ना कि भाई आप चले गए वहां पर आपको मिलने आई तो कम से कम बात करेंगे ना आपसे, क्योंकि जगन्नाथ भगवान भी इतने पक्के हैं ना, वो क्या करते हैं जैसे जगन्नाथ को मिलने के लिए लक्ष्मी देवी आती है ना, तुरंत दरवाजा बंद करते भगवान, मतलब पंडा लोग जो है उनका बंद करते हैं और केवल उनकी पहनी हुई माला जो है वो जगन्नाथ जी लक्ष्मी के लिए भेज देते हैं और मिलने से इनकार कर देते हैं। अभी आप देखो रानी जब आ रही है तो राजा उन लोगों को मिलने के बदले में दरवाजा बंद कर रहे हैं, रानी का अपमान हो गया ना, सो इंसल्टेड, तो बड़े गुस्से से वो मंदिर में प्रवेश नहीं करती, सीधा साइड से निकल जाती है, बाहर आती है और जिस रथ से भगवान आए है ना उस रथ के पहिए तोड़ देती है वो गुस्से से। हाँ, मुझे छोड़कर मेरा अपमान करते हो, तो वो रथ जो लकड़ी से बना है उसके आरी को तोड़ के वो चली जाती है। बोलते आओ अभी तुम देखती हूँ मैं तुम्हारा क्या रहने का व्यवस्था यहाँ पर है, भोजन है ना, पूरा भोजन के लिए यहाँ पर रहते हो ना, वो पूरा मेरे अंडर में है, सब जो किचन है वो मेरी इंचार्ज मैं हूँ, अभी तुम आ जाओ और खाना मांगो मैं दिखाती हूँ। और क्या करती है, जैसे ही वहां से उल्टी निकल के आती है गुस्से से, पैर मार के गुस्से से आती है, सबसे पहले 7200 चूल्हे सब तोड़ देती है, अभी खाना ही नहीं बनेगा, देखते हो कहां से खाते हो। तो भगवान ये आनंद ले रहे हैं, उनको पता नहीं वहां पर किचन टूट गया उनका। तो वो होता है पांचवें दिन, हेरा पंचमी के दिन, मतलब द्वितीय के दिन सेकंड डे को रथयात्रा होती है और पंचमी के दिन लक्ष्मी देवी गुस्सा करके वहां जाती है। उसके बाद और 7 दिन भगवान वहां रहते हैं, तो 3+6 9 दिन वहां रहते हैं। भगवान को यहाँ कुछ पता नहीं है, वो आनंद ले रहे हैं, ब्रजवासियों के साथ में मिठाई खा रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि जगन्नाथपुरी का जो प्रसाद है बहुत टेस्टी होता है, वो बहुत टेस्टी होता है, लेकिन उसपे भी वो 9 दिन का प्रसाद जो है गुंडीचा मंदिर वाला वो उससे भी टेस्टी होता है। तो लोग वहां पर खरीदते हैं उसको, उसका दुकान लगते है बहुत सारा, पूरा फैन फन फेयर लगता है, लोग खरीद खरीद के लेके जाते हैं उसको, इतना टेस्टी होता है वो, बड़े प्रेम से बनता है। तो 9वें दिन उल्टी रथ यात्रा आरंभ होती है, भगवान रथ में बैठकर आगे बलदेव, बीच में सुभद्रा देवी और चक्र और पीछे जगन्नाथ जी आराम से मजा करते 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 जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो उम्मीद क्या होगी, उतरेंगे और मंदिर चले जाएंगे अपने अंदर, लेकिन जैसे वहां पहुंचते हैं लक्ष्मी देवी आके खड़े हो जाते रास्ते पर और दरवाजा बंद कर देती, अभी आपको यहां पर प्रवेश नहीं, आपने वहां पर हमारे मुंह पर दरवाजा बंद किया था ना, अभी आप मेरे घर पे आए हैं, दरवाजा बंद। तो सुभद्रा जी बलदेव जी बोलते अभी मियां बीवी के झगड़े में हम क्यों पड़े, परेशान शांति शांति रखते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कभी भी पति पत्नी के झगड़े में नहीं उतरता है, कभी भी नहीं उतरता, क्योंकि उसको दोनों तरफ से मारी पड़ती है, इसलिए वो बुद्धिमान व्यक्ति कभी पति पत्नी के झगड़े में नहीं उतरता है। तो जैसे जगन्नाथ को दरवाजा बंद हो जाता है, जगन्नाथ जी बहुत दुखी हो जाते हैं, अरे मैंने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, अभी मेरे एंट्री नहीं मिल रही यहाँ पर, सब सखा परेशान, सब पुजारी पंडा परेशान हो जाते हैं, बोले क्या करें अभी कैसे करें। लक्ष्मी देवी दरवाजा बंद करके पैर पटक के अंदर चली गई, अभी दरवाजा नहीं खुलेंगे, बाहर खड़े रहो, अभी रात भर भगवान रथ पे खड़े हैं, रो रहे हैं भगवान, क्या करें अभी मुझे पत्नी अंदर नहीं ले रही है। बोलते सखा लोग मित्र लोग बताओ कुछ तरीका, बताओ कुछ आइडिया समझाओ कि उनका दिल कैसे बहलाओ मैं, अभी कैसे ठंडा करूं गुस्सा। तो पंडा लोग आइडिया करते कि आप हम आपको ऐसा वेश पहनाएंगे हाँ कि सारा जो है आपका वस्त्र जो है वो सोने का रहेगा, गोल्ड, आपका मुकुट भी गोल्ड का रहेगा, आपके हाथ भी गोल्ड करेंगे, आपके पैर भी गोल्ड करेंगे, आपका जितना माला है, जितने कर्णफूल है, नाकों का नाक का फूल है, जितनी भी आपकी श्रृंगार है सब सोने का रहेगा। और वो सोना जो है आज की तारीख में 1000 किलो सोना है, हरेक के अंग पर, जगन्नाथ के बॉडी पर 1000 किलो, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है किताबों में कि सोने के फूल, सोने की माला, सोने के नेकलेस, सोने का हार, सोने के पैर, सोने का मुकुट, सब सोने का। और ड्रेस का नाम क्या है, सुनावेश, हाँ सुनहरा अवतार, सुनहरा वेश। तो रात भर जो है ये आइडिया सोच के उसके भक्त लोग जो है वो जगन्नाथ को सुनावेश पहनाकर सुंदर बना देते हैं। नेक्स्ट डे लक्ष्मी देवी सोचती है, देखते हैं बाहर क्या चल रहा है, इसलिए वो देखने को आती है, गुस्से से आती है, बड़ा रुबाब दिखा दे, लेकिन जैसे ही भगवान का ये सुंदर रूप देखती है तुरंत पिघल जाती है, अरे मेरे ठाकुर जी, मेरे नाथ, और उनका सौंदर्य देख के उनका गुस्सा भूल जाती है, दरवाजा खोलते उनको अंदर ले लेती है। इस तरह से रथ यात्रा का ये उत्सव जो है समाप्त हो जाता है, बड़ा सुंदर उत्सव है। हा? और हमारा ऐसा विचार है कि 2015 साल में, अभी आपको डिक्लेयर करते याद रखना डेट, ये जून महीने में रथ यात्रा होती है ना, तो जिस साल में चतुर्मास में आषाढ़ महीना अधिक में आता है, अभी इस साल में कौन सा महीना अधिक में आया बोलो, हाँ भद्रपद, हाँ भद्रपद अधिक इस साल में आ रहा है, जिस साल चतुर्मास में आषाढ़ महीना अधिक में आता है उस साल जगन्नाथ अपना शरीर बदल देते हैं, उनका जो नाभि ब्रह्म है, आत्मा जो है, वो एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर कर देते हैं और नई मूर्ति में भगवान प्रवेश करते हैं। वो अभी 2015 में होने वाला है और 2015 में अगली कथा में आपको बताएंगे कि जगन्नाथ जी का शरीर जो है दोबारा कैसे बनता है, उसकी लंबी कहानी आप याद रखना, मुझे अगली बार याद करना, ठीक है ना। तो 2015 में जब शरीर बदले होते हैं भगवान का, जब विग्रह उनका बदले होता है, तो 10 लाख के बदले में केवल 25 लाख लोग वहां आते बिना इन्विटेशन के, ऐसा रिकॉर्ड है उसका। जिस साल बदले होता है उस साल 25 लाख पीपल कम देयर, 2.5 मिलियन, 25 लाख। तो वो उत्सव में हम लोग भक्ति विधान से यहाँ पर यात्रा लेके जाने वाले हैं और वो यात्रा जो है ना वो कई हिस्से में होगी, 2 महीने की टोटल यात्रा होगी, उसमें 4 दिन 8 दिन 4 दिन 8 दिन अलग अलग बैच में लोग आ सकते हैं। हम 2 महीना वहीं पर रहेंगे और सब उत्सव का दर्शन करेंगे, भगवान का मूर्ति का नया निर्माण कैसे होता है, पहले रथ यात्रा कैसी होती है, स्थान यात्रा कैसी होती है, फिर स्ट्रेट रथ यात्रा, फिर उल्टी रथ यात्रा, हेरा पंचमी, सारे उत्सव का दर्शन करेंगे उस साल। क्योंकि जब जीवन हमको भगवान ने दिया है तो बहुत बुढ़ा शरीर होने के पहले एक बार ही सब कुछ देख लेना चाहिए। तो इस भावना से 2015 साल में हम सब भक्त लोग भक्ति विधान से स्पेशल यात्रा करके जाएंगे जगन्नाथपुरी में। आप सबको निमंत्रण है, हाँ स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे, डोंट वरी, सबको लेके जाएंगे। हरे कृष्णा। एक अलग फंड तैयार करेंगे, जिनको जिनको मुमकिन नहीं है पूरा देना उनको डिस्काउंट में लेके जाएंगे, लेकिन लेके जरूर जाएंगे। आप लोग अपना प्लानिंग बना के रखना, बस अपना पीएल वीएल का हिसाब करके रखना, ताकि हाँ हॉस्पिटल खाली मत करना, टर्न बाय टर्न आना, एक बैच में इतने, बाद में सेकंड बैच में इतने, थर्ड बैच में इतने, फोर्थ बैच में इतने, तो फिर क्या होगा, हॉस्पिटल बंद नहीं पड़ेगा, लोग गाली नहीं देंगे और लोगों की सेवा भी होती रहेगी, आप लोगों को जगन्नाथपुरी का आनंद प्राप्त होते रहेगा। तो अभी आपको विनती क्या है, कल के दिन में बड़े दिल से जगन्नाथ भगवान का नजर जहां पड़ेगा वहां स्वच्छ होना चाहिए, इस भावना से कल के दिन आप महामार्जन करना। और फिर 21 तारीख को मंदिर की बड़ी रथ यात्रा होगी, 2 बजे आरंभ होगी, तो उसमें लाभ लेना, चलना साथ में। और शनिवार के दिन दोपहर को 2 बजे भक्ति वेदांत के अंदर भी रथ यात्रा होगी। अभी रथ यात्रा के बीच में अपन उतना प्रवचन नहीं होगा आपका हमारा, तो आपको एक बात बता देते हैं, आपको ध्यान में सुनना, थोड़ा टाइम हो रहा है लेकिन फिर भी सुनना ये बात, क्योंकि मेरी इच्छा ये है कि आपको रथ यात्रा का पूरा लाभ मिलना चाहिए, कंप्लीट लाभ मिलना चाहिए। चाहे आप गांव से हो, शहर से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, सिख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जगन्नाथ जी पूरी कृपा करने वाले हैं। और वो कृपा क्या करने वाले हैं तो ध्यान से सुनना आप, ऐसी 5 बातें हैं, 5 काम ऐसे हैं जो करने से, 5 करो या उसमें से 1 करो, कोई भी आप करेंगे तो आपको भगवान के धाम में गति प्राप्त होगी। क्या है कि जब जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा बलदेव माता जी, सुभद्रा माता जी और बलदेव भगवान जब रथ में बैठकर बाहर निकलेंगे, तो रथ में बैठे हुए भगवान जो है बड़े खुश भावना में होते हैं कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, ब्रजवासियों से मिलने जा रहा हूँ। तो जब आदमी बड़ा खुश होता है ना, खुश, तो वो जो मांगता है वो दे देता है, होता है ना, कभी राजा का बर्थडे, राजा बहुत खुश है, तो क्या है, यहाँ से माला निकाला, यहाँ से कंगन निकाला, जो आते सबको दे देता है गिफ्ट में, ऐसे मूड में जगन्नाथ भगवान रहते हैं। तो ऐसे कहा गया है कि रथ में रथारूढ़ गच्छन, रथ पर बैठे हुए जगन्नाथ का दर्शन जो कर लेता है, केवल ऐसा देखना नहीं, बड़े प्रेम से दिखता है उनको, निहारता है उनको, जैसे माँ अपने बालक को देखती है वैसे निहारते रहता है भगवान को, वो देखने से इस जन्म के अंत में जब हम मरेंगे तो सीधे जगन्नाथ भगवान के धाम में जाएंगे, भगवान किंगडम ऑफ गॉड में जाएंगे। उनको रथ पर बैठे हुए देखते हुए जो कोई हाथ जोड़कर प्रणाम करेगा उसको भी वही फल प्राप्त होगा, और हाथ जोड़ने के साथ जमीन पर सर रख के दंडवत प्रणाम करेगा उसको भी वही प्राप्त होगा। यह केवल देखने का और प्रणाम करने का लाभ हो गया। फिर रथ को होगी रस्सी ना, उस रस्सी से खींचते ना हम लोग, रस्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रस्सी को जो हाथ लगाएगा, हाथ लगा पाएगा, भीड़ में जाके टच करेगा, उसको भी जीवन के अंत में किंगडम ऑफ गॉड भगवान का राज्य प्राप्त होगा। और अगर सबसे अधिक भाग्यवान आप होंगे और जगन्नाथ की रथ यात्रा को रस्सी को पकड़ के खींचेंगे और भगवान को वृंदावन तक पहुंचने में सहायता करेंगे, वो भी सबसे बड़ा भाग्यवान जीव है। इसलिए लोग देखेंगे आप भाग भाग के रथ को रस्सी पकड़ के खींचने का प्रयास करते हैं। और इससे भी अधिक भगवान लोग कौन होंगे, इस रथ यात्रा का उत्सव जो आयोजन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, डेकोरेट करेंगे, भोग बनाएंगे भगवान को, आप सबको मौका है। घर से सब लोग आप जगन्नाथ के लिए एक एक आइटम, एक एक पोर्शन में भोग बनाकर लेकर आना। 12 बजे तक स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट में जमा करना, जहां बोलेंगे थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर जहां बोलेंगे वहां पर डिपॉजिट करना। वो सब जगन्नाथ को रथ की यात्रा के लिए बाहर निकलने के पहले उनको भोग लगाया जाएगा, पूरा खाला पिला के सफर के पहले कैसे हम लोग पूरा पेट फिट करके बाहर निकलते हैं, ये बहुत देर तक भूख लगनी चाहिए सर, वैसे जगन्नाथ को भी पूरा खाना पीना खिला के बाहर निकाल लेते हैं। और कुछ लोग डेकोरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग रंगोली निकाल रहे हैं, कुछ लोग गीत गा रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं, कुछ लोग रस्सी खींच रहे हैं, हाँ कुछ लोग वाइंड अप में है, कुछ लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में है। जगन्नाथ के रथ पे बैठकर सफर करने के उपलक्ष्य में, उत्सव में सब लोग अपना सेवा दे रहे हैं, उनको भी वही लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आप जगन्नाथ का रथ यात्रा का उत्सव है टाइम पास के रूप में मत देखना उसको, जीवन की अंतिम सर्वोच्च प्राप्ति जो है वो इस जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव में आपको हो सकती है। और कुछ लोग आप लोग जा नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोगों के लिए खास भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के अंदर ही ओनली फॉर स्टाफ मेंबर्स एंड डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स एंड रिलेटिव्स यहाँ पर रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। उसमें भी ऐसा है, समझो कुछ औरतें हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, उनको वो धक्का मुक्की में जमेगा नहीं, तो एक राउंड ओनली हाउसकीपिंग, सब लोग हटेंगे हाउसकीपिंग के लोग खींचेंगे, एक राउंड केवल नर्सेज एंड नर्स ट्यूटर्स एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स एक लाइन में खींचेंगे, और एक लाइन में मेंटेनेंस और मैनेजमेंट और जो बचे कुचे सब लोग हैं वो थर्ड राउंड खींचेंगे। सबको बड़े प्रेम से और शांति से रथ खींचने का मौका मिलेगा, और जो लोग रथ नहीं खींच रहे हैं उनको डांस करने का मौका भी मिलेगा कीर्तन के साथ। और हमारे दुबे जी ने इसमें लेजिम का इंतजाम भी किया है, हाँ तो आप हर तरह का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ का उत्सव आनंद ही आनंद है, उसमें कोई टाइम मतलब बोर होता ही नहीं किसी को। तो परसों के दिन यानी गुरुवार के दिन मंदिर का रथ यात्रा और शनिवार के दिन भक्ति वेदांत रथ यात्रा, दोनों का पूरा आनंद लेना और सही भाव से लेना, हाँ सही भाव से भगवान की सेवा करते हुए रथ यात्रा का लाभ लेने का प्रयास करना। बोलो जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ पुरी की, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की, गुंडीचा मार्जन की, निताई को।